यज्ञ के कॉल कट हो जाने के बाद आशुतोष की दोबारा उससे बात नहीं हुई थी और वो आशिका के बारे में जानना चाहते थे। एक घंटे से भी ज्यादा का टाइम हो गया था और यज्ञ का फोन अभी भी बंद बता रहा था। इससे आशुतोष बुरी तरह झुंझला गए थे और उन्होंने सीधे अभिमान को कॉल किया। जब अभिमान को ये पता चला कि उन्होंने यज्ञ से वीडियो कॉल के दौरान आशिका को देखा था तो अभिमान के मन में एक नई उम्मीद जाग गई थी, पर साथ ही उसे इस बात का भी डर था कि यज्ञ अनजाने में आशिका के साथ किसी तरह की बदतमीजी न कर दे। वो यज्ञ से बात करना चाहता था, पर इसी बीच उसके पास एक इंटरनेशनल कॉल आया। अभिमान और आशुतोष दोनों यही उम्मीद कर रहे थे कि ये कॉल आशिका का होगा, लेकिन तभी कॉल पर यज्ञ की आवाज़ आई। अजीब बात है, तुम्हारे पास तुम्हारी वाइफ के नंबर तक सेव नहीं है, ऐसे क्या हर किसी को तुम उसके नाम से बुलाने लगते हो? यज्ञ ने तंज भरे लहजे में कहा। यज्ञ की आवाज़ सुनकर अभिमान और आशुतोष दोनों की उम्मीद टूट गई थी। उनके चेहरे पर मायूसी के भाव थे। दोनों ही चुप हो गए थे और किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। हद है यार, मेरे कॉल की कोई वैल्यू नहीं है जो तुम इस तरह मेरी आवाज़ सुनकर इतना डिसअपॉइंट हो गए कि कुछ नहीं बोल रहे? जाने दो, मुझे कॉल करना ही नहीं चाहिए था। और एक बात कान खोलकर सुन लो, अगर उसने नहीं कहा होता तो मैं तुम्हें कॉल बिल्कुल नहीं करने वाला था। अभिमान के कोई जवाब न देने पर यज्ञ चिढ़ गया था। वो कॉल काटने ही वाला था कि तभी जल्दी से आशुतोष बोले, रुको, क्या तुम उससे मिले थे? तुम आशिका की बात कर रहे हो ना? मैंने अभिमान को कॉल किया था ना, यज्ञ उलझन भरे स्वर में बोला। और उसने जल्दी से स्क्रीन पर नंबर चेक किया तो अभिमान के ही नंबर शो हो रहे थे। वो हैरानी से बोला, डोंट टेल मी कि आप इतनी रात इससे बात कर रहे थे डैड, आपको पता है ना ये कौन है? देखो, बाकी बातें बाद में पूछ लेना, मुझे बताओ क्या तुम आशिका से मिले थे? क्या बात हुई उससे? क्या वो तुमसे नाराज़ थी और तुमने उसे पहचान लिया था ना? तुमने कॉल पर हमारी बात ठीक से सुनी थी ना कि आशिका जिंदा है? आशुतोष ने यज्ञ के सामने सवालों की छड़ी लगा दी थी और उनके सारे सवाल आशिका से ही जुड़े हुए थे। उनकी आवाज़ में बेचैनी थी, जिसे महसूस करते हुए यज्ञ ने शांत लहजे में कहा, हाँ, मैंने उसे पहचान लिया था और मैं उससे मिला भी था। क्या वो ठीक है? अभिमान ने जल्दी से पूछा। हाँ, वो ठीक है और तुमसे बात भी करना चाहती थी। अनफॉर्चुनेटली मेरा फ़ोन डेड था और उसके पास कोई मोबाइल नहीं था, यज्ञ ने गहरी सांस लेकर कहा। अभिमान के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई थी। उसने शांत आवाज़ में कहा, वो हमारे पास क्यों नहीं आ रही है? अपनी ज़रूरी काम के चलते। उसने ज़्यादा कुछ नहीं बताया, लेकिन हाँ, उसके साथ कोई था जिसके सामने वो खुलकर बात नहीं कर पा रही थी। उसने अपने काम के बारे में भी नहीं बताया और हम दोनों को भी बात करते हुए थोड़ा ही टाइम हुआ था कि उस आदमी ने कहा कि उन्हें अब जाना चाहिए, वे ज़्यादा देर तक बाहर नहीं रह सकते हैं। यज्ञ ने सब कुछ अभिमान को बता दिया था। वो मुझसे क्या बात करना चाहती थी? क्या वो मुझे मिस करती है? अभिमान ने आगे पूछा। हाँ, वो तुम्हें कोई मैसेज देना चाहती थी, पर मैंने बताया ना, उसके साथ कोई और मौजूद था और उसके आने के बाद वो ठीक से कुछ बोल नहीं पाई। उसने तुम्हें कोई मैसेज नहीं दिया, पर इंसानियत के नाते मैंने तुम्हें बता दिया कि मैं अपनी बहन से मिला था, यज्ञ ने जवाब दिया। आशुतोष अब तक पूरी बातें ध्यान से सुन रहे थे। उन्हें खुशी थी कि यज्ञ आशिका से मिला था, पर साथ ही उसने जब अपनी और आशिका की पूरी बातचीत के बारे में बताया तब महसूस किया कि इन सब के बीच उनका कहीं भी जिक्र नहीं हुआ था। क्या उसने हमारे बारे में नहीं पूछा या कोई मैसेज नहीं दिया? आशुतोष ने भारी आवाज़ में पूछा। क्या वो हमसे नाराज़ है? हाँ, कह सकते हैं, क्योंकि शुरुआत में वो मुझसे भी गुस्सा थी। मुझे लगता है कि उसे भी मेरी तरह ही ये बात पसंद नहीं आई कि आपने उसका नाम और पहचान किसी और को दे दी, पर साथ ही थोड़ी देर बाद वो मान गई थी, यज्ञ ने मुस्कुराकर बताया। आशिका के बारे में सोचकर ही उसके दिल को सुकून मिल रहा था। इसका मतलब हमारे लिए भी उसे मनाना आसान होगा। काजल को बताऊंगा तो वो बहुत खुश होगी। और आशुतोष खुश होते हुए बोल रहे थे, लेकिन तभी अचानक वो रुक गए। कुछ पल रुककर उन्होंने हिचकिचाते हुए पूछा, क्या सच में उसे ये पसंद नहीं आया कि हमने एक अडॉप्टेड चाइल्ड को उसका नाम दे दिया? तुम जानते हो ना हमने ऐसा क्यों किया था, ताकि काजल को उसकी याद ना आए, पर यह गलत था, अभिमान और यज्ञ एक साथ बोले। आशुतोष के चेहरे पर मायूसी छा गई थी। अब वो विवाह से उसका नाम और पहचान छीन भी नहीं सकते थे। पिछली बार भी काफी मुश्किल से डॉक्यूमेंटेशन का काम हुआ था, लेकिन तब वो बच्ची थी। अगर आशिका को अच्छा नहीं लगेगा तो हम उसे आज से उसके नाम से बुलाने के बजाय विवाह को उसके असली नाम से बुलाएंगे, आशुतोष ने बीच का रास्ता निकाला। यज्ञ के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट उभर आई थी। वो तो हमेशा से विवाह को उसके असली नाम से बुलाना चाहता था। कुछ देर की बातचीत के बाद उन्होंने कॉल कट कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ आशिका गर्व के साथ एजेंसी वापस पहुंच चुकी थी। जैसे ही वो अपने कमरे में गई, उसके बेड पर रेहान बैठा हुआ था। आशिका उसे देखकर हैरान रह गई थी। इतना गंदा मुंह मत बनाओ, तुम्हारे यहाँ होने का पता चला तो आ गया, रेहान मुंह बनाकर बोला और जाकर आशिका को हक कर लिया था। लेकिन तुम्हें किसने बताया कि मैं एजेंसी ऑफिस हूँ? मुझे तुम पर गुस्सा होना चाहिए, यहाँ मेरी ज़रूरत थी और तुमने मुझे कॉल करके बताना ज़रूरी नहीं समझा, आशिका उससे अलग होते हुए नाराज़गी जताकर बोली। तुम्हारे अननोन हस्बैंड से पता चला, बेचारा तुम्हारे लिए बहुत परेशान था, रेहान ने बताया। अभिमान का जिक्र होते ही आशिका के चेहरे पर हल्की परेशानी के भाव उभर आए थे। उसने जल्दी से पूछा, डोंट टेल मी कि तुमने उसे बता दिया कि इस वक्त मैं एजेंसी ऑफिस हो सकती हूँ। उसे नहीं पता चलना चाहिए कि हम क्या काम करते हैं। वो यहाँ तक आ जाएगा तो क्या होगा? कुछ पता नहीं चलेगा, और मैंने उसे कुछ बताया भी नहीं है। अब मेरी बात गौर से सुनो, इनका काम निपटाओ और निकलो यहाँ से। मुझे इन लोगों पर यकीन नहीं है। ये तुम्हें अपने पास रखने के लिए कोई भी गिरी हुई हरकत कर सकते हैं। तुम्हें किसने कहा था यहाँ आने के लिए? मैंने तुम्हें इन्फॉर्म नहीं किया था क्योंकि मैं जानता था कि ये लोग क्या सोच रहे हैं। रेहान ने आशिका को डांटना शुरू कर दिया था। मैं खुद यहाँ नहीं आना चाहती थी। गर्व ने मुझे ढूंढा, और सही कहूँ तो वो बिल्कुल ठीक वक्त पर आया था। मिस्टर स्काई मुझे किडनैप करके ले जा रहे थे, और यकीन नहीं होता तृप्ति और अभिमान की मॉम ने उनका साथ दिया। मेरा मन कर रहा है मैं जाकर उन सबको शूट कर दूं, आशिका गुस्से में चिढ़ते हुए बोली। सिर्फ रेहान ही था जो आशिका के हमेशा करीब रहा था, और उसे कुछ बताने से पहले आशिका को एक पल भी नहीं सोचना पड़ता था। काम में डूबे होने की वजह से आशिका का इस तरफ ध्यान जरूर नहीं गया था, पर वो अभी भी भूली नहीं थी कि किस तरह निशा उस दिन अभिमान को अपने साथ ले गई, और फिर तृप्ति ने उसे मिलने बुलाने का कहकर उसे स्काई को सौंप दिया था। सब लोग तुम्हारे साथ बहुत बुरा बिहेव करते हैं। मुझे लगा कि तुम अपनी नई लाइफ में खुश होगी, और तभी मैं थोड़ा बेपरवाह हो गया था। चिंता मत करो, यहाँ से निकलकर हम कहीं और चले जाएंगे। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें वहाँ वापस जाने की, रेहान ने जवाब दिया और आगे बढ़कर आशिका के हाथ को सहलाया। आशिका ने तुरंत नामे सिर हिला दिया था। उसके मना करने पर रेहान हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा, क्योंकि पिछले कुछ सालों से वो उसे देख रहा था। आशिका कभी उस जगह नहीं रहती थी जहाँ उसे प्यार ना मिलता हो या उसकी इंसल्ट की जाती हो।
तुम उस जगह वापस जाना चाहती हो? ऐसे लोगों के बीच जो तुम्हें पसंद नहीं करते हैं, उल्टा तुम्हारे खिलाफ उल्टी सीधी हरकत करते हैं, रेहान उसे घूरते हुए बोला। हाँ, मैं उस जगह पर जाना चाहती हूँ, लेकिन उन लोगों के लिए नहीं, बल्कि अभिमान के लिए। वो मुझसे बहुत प्यार करता है। तुमने देखा ना कि मेरे जाने के बाद वो कितना परेशान होकर मुझे ढूंढ रहा था। क्या तुमने उसे बताया कि मैं ठीक हूँ? आई होप कि यज्ञ ने मेरा मैसेज दे दिया होगा और वो मेरे ज़्यादा फ़िक्र नहीं कर रहा होगा। पहले मैंने नहीं सोचा था कि मैं दोबारा उसके पास जाऊंगी, लेकिन मैं उसे इस तरह परेशान भी नहीं छोड़ सकती हूँ। यहाँ से फ्री होते मैं सीधे अभिमान के पास जाने वाली हूँ, आशिका ने जवाब दिया। हाँ, वो तुम्हारे लिए परेशान था। वो पहली बार मैंने किसी को अपने अलावा तुम्हारे लिए इतना परेशान देखा है। वो एक अच्छा लड़का है, रेहान ने मुस्कुराकर कहा। आशिका भी अब कहीं ना कहीं बेफिक्र थी। भले ही उसकी अभिमान से डायरेक्ट बात ना हो पाई हो, लेकिन रेहान और यज्ञ के जरिए अभिमान को ये पता चल चुका था कि आशिका किसी मुसीबत में नहीं है। अगली सुबह इशिका एक ज़रूरी प्रोजेक्ट के चलते चलते ही राजवंश एम्पायर पहुंच चुकी थी। उसने ऑफिशियली डॉक्टर मर्चेंट के तौर पर राजवंश एम्पायर का न्यू एनर्जी का R&D डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लिया था। इशिका जब ऑफिस पहुंची तब कोई एम्प्लॉयज़ वहां नहीं आए थे। ऐसे में इशिका सीधे प्रणय के वर्कस्पेस में पहुंची। इशिका ने 3 दिन पहले प्रणय को एक काम दिया था। पिछले 2 दिन से वो ऑफिस नहीं आ रहा था। ऊपर से इशिका ने उसे जो हार्ड ड्राइव दिया था वो वहीं पर बेपरवाही से पड़ा हुआ था। तो मेरा अंदाज़ा सही था, और तुमने इसे चेक तक नहीं किया। इसे चेक करते तो शायद तुम्हें समझ आ जाता कि इसके अंदर तो कुछ था ही नहीं। पृथ्वी ने बताया तुम 2 दिन की छुट्टी पर हो और आज ऑफिस आने वाले हो। कहाँ थे तुम पिछले 2 दिन से प्रणय? इशिका ने उलझन भरे स्वर में खुद से कहा और तुरंत दिशांक को कॉल लगा दिया था। मैंने तुम्हें उसका पीछा करने के लिए और उसके बारे में पता लगाने को कहा था। 2 दिन हो चुके हैं, क्या अपडेट है? दिशांक के कॉल रिसीव करने पर इशिका ने सीधे सीधे पूछा। हाँ, उसका पीछा करने पर पता चला कि वो पिछले 2 दिन से मुंबई में है और अपने किसी फैमिली फेस्टिवल को अटेंड करने के लिए गया था। उसके बारे में कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला है, दिशांक ने जवाब दिया। उसके जवाब से भी इशिका को संतुष्टि नहीं मिली थी। वो प्रणय के बारे में सोच रही थी। उसने तंज भरी मुस्कुराहट के साथ कहा। कई बार कुछ सस्पिशियस ना मिलना भी सस्पिशियस होता है दिशांक, वो भी उस जैसे लोगों का। मतलब वो यहाँ पूरी तैयारी के साथ आया था और उसे पता था कि एक ना एक दिन उसके बारे में पता लगाया जाएगा, तब हमें कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, कह सकते हैं लड़के ने होमवर्क काफ़ी अच्छे से किया है, पर उसके बारे में जितना मुझे पता चला था वो मैंने आपको बता दिया है। उस पर नज़र रखने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते, दिशांक ने लाचारी से कहा। ठीक है, फिर यही करते हैं, और ध्यान रखना हमारे खिलाफ कोई भी कदम ना उठा पाए। उसकी जासूसी करना जारी रखो, इशिका ने जवाब दिया और कॉल कट कर दिया था। किसकी जासूसी की जा रही है? अचानक इशिका के पीछे से आवाज़ आई तो वो चौंक गई थी। क्या लगता है कौन आया होगा? अगले पार्ट में तो पता चल ही जाएगा। पढ़कर समीक्षा कर दीजिएगा। अगले पार्ट पर मिलते हैं।